नक्श ने उन सबको जो प्रोजेक्ट दिया था उसकी डेडलाइन पूरी होने में सिर्फ एक ही दिन बचा था। नक्श ने इशिका को रोहन से बातें करते हुए सुना जब उसने ये कहा कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट को संभाल लेगी। उसकी बातें सुनकर नक्श परेशान हो गया था क्योंकि उसे डॉक्टर मर्चेंट की तरफ से अभी तक अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिला था। नक्श ने तुरंत आयशा को कॉल किया और कहा, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। डॉक्टर मर्चेंट ने अभी तक मेरे प्रोजेक्ट पर काम किया है या नहीं? नक्श को गुस्से में देखकर आयशा थोड़ी घबरा गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को सामान्य करके कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था वो इंडिया में नहीं है, उन्हें आने में टाइम लगेगा, वो काफी बिजी रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल तक मेरे प्रोजेक्ट का काम पूरा चाहिए आयशा, नक्श ने चिढ़कर कहा, जिस पर आयशा चुप हो गई थी। आयशा फंस गई थी, उसने नक्श को टालने की भी कोशिश की लेकिन वो उसकी बात सुन नहीं रहा था। आयशा के चुप होने पर नक्श ने कहा, अगर तुमने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो मुझसे पहले रोहन और ऋषिका मिलकर अपनी टीम के साथ इस काम को पहले पूरा कर लेंगे, इससे मेरी बहुत इंसल्ट होगी। नक्श की बातें सुनकर आयशा ने घबरा कर कहा, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ और बोलती हूँ कि वो जल्द से जल्द तुम्हारे प्रोजेक्ट को पहले पूरा करें। आयशा की आवाज से उसकी घबराहट को नक्श ने भांप लिया था। नक्श ने सीरियस टोन में कहा, आयशा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? बिल्कुल नहीं नक्श, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, तुम कॉल करो, मैं अभी डॉक्टर मर्चेंट से बात करती हूँ, आयशा ने जल्दी से कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। नक्श से बात करने के बाद वो बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। पिछले कई दिनों से वो राधिका के ईमेल से डॉक्टर मर्चेंट को मैसेजेस कर रही थी, हर बार उसे यही जवाब मिला था कि वो एक बिजनेस मीटिंग पर है और उन्हें परेशान ना किया जाए। आयशा परेशानी में नाखून चबाते हुए बोली, मैं कल तक नक्श को उसके प्रोजेक्ट पर काम करवाकर नहीं दे पाऊंगी, पहले ही मेरी वजह से उसे शेयर्स नहीं मिल रहे हैं और अब इतना बड़ा नुकसान, कहीं इसके बाद वो सगाई तो नहीं तोड़ देगा? सगाई टूटने के ख्याल से ही आयशा जल्दी से बोली, नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा नक्श का दिल जीतने के लिए। अचानक आयशा के दिमाग में कुछ सूझा और वो जल्दी से राधिका के पास गई। राधिका के पास आते ही सीधे सीधे बोली, मॉम क्या आप दिल्ली के मित्तल फैमिली को जानती हैं? नक्श को उनसे कॉन्टैक्ट करना है। राधिका ने पिछले कई दिनों में काफी रिकवर कर लिया था, कल ही उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। टाइम पास करने के लिए वो एक किताब पढ़ रही थी। जैसे ही राधिका ने आयशा की बात सुनी, गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी। राधिका ने खुद को सख्त किया और बिना आयशा की तरफ देखे कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, उसने साफ तौर पर मना कर दिया था। उनके मना करने के बावजूद भी आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने राधिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसके हाथों की तरफ देखा तो वो समझ गई थी कि राधिका मित्तल फैमिली को जानती है, लेकिन वो आयशा को उनसे मिलवाना नहीं चाहती थी। आयशा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ये औरत कितनी स्वार्थी है और मेरी माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। मालविका आंटी बचपन से ही मुझे कितना प्यार करती थी, मुझे अच्छी लाइफ मिले इसके लिए उन्होंने मुझे खुद से दूर तक कर दिया था, अब ये तो मेरी हेल्प करने से रही, तो मुझे ही कुछ सोचना होगा। आयशा काफी घबराई हुई थी और इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवंश एम्पायर में उस प्रोजेक्ट पर इशिका अकेले काम नहीं कर रही थी, उसके साथ उसकी पूरी टीम थी और उन्होंने साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर थोड़ा बहुत काम कर लिया था, बस थोड़े इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। काम खत्म करते करते शाम हो चुकी थी। इशिका ने अपना लैपटॉप उठाया और घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में आई। वो जाकर सीधा अभिमन्यु की गाड़ी में बैठ गई। इशिका ने नोटिस किया अभिमन्यु गाड़ी में नहीं था और ना ही पृथ्वी। तभी ड्राइवर ने उससे कहा, मिस्टर राजवंश की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उन्होंने मुझे पहले आपके घर ड्रॉप करने के लिए कहा है। ठीक है, इशिका ने जवाब में इतना ही कहा। उसने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि अभिमन्यु कहाँ कौन सी मीटिंग में हो सकता है। वो वसुधा के साथ थी, पूरी रात अभिमन्यु वहाँ नहीं आया था। सुबह भी उसकी अभिमन्यु से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और वो अकेले ही ऑफिस पहुंची। इशिका जैसे ही R&D डिपार्टमेंट के अंदर गई, उसे सामने नक्श दिखाई दिया जो कॉफी के कप के साथ था और काफी बेपरवाह दिख रहा था। इशिका को देखते ही नक्श ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस फ्रेंड होने के नाते तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज आखिरी दिन है, अगर तुमने शर्त के मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। इशिका ने गहरी सांस ली और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, इस आदमी के पास करने के लिए कोई काम नहीं है क्या? जब देखो इधर उधर भटकती आत्मा की तरह घूमता रहता है। इशिका ने नक्श को इग्नोर किया और फिर अपनी टीम के वर्क स्टेशन की तरफ जाने लगी। नक्श उसके पीछे आते हुए बोला, देखो एक बात तो तय है कि तुम ये शर्त हारने वाली हो, बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। यकीन मानो, तुमने मेरे साथ जितना भी बुरा बर्ताव किया है मैं वो सब भूल जाऊंगा और तुम्हारी डॉक्टर मर्चेंट से एक मुलाकात तो जरूर करवाऊंगा। इशिका नक्श की बात सुनकर मन ही मन हंसी और उसकी तरफ देखकर बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इशिका के इनकार करने पर नक्श फिर से भड़क गया था। वो बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इतना हवा में क्यों उड़ रही हो, तुम्हारे दिशांक राठौर के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर मर्चेंट से करवा देगा। किसी गलतफहमी में मत रहना, उस जैसे लोग लड़कियों को यूज करना जानते हैं। जिस दिन तुमसे उसका मन भर जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। अगर वो इतना ही तुम्हारा सगा है तो उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की इस प्रोजेक्ट में? मैंने कहा ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, इशिका ने इस बार सख्ती से कहा। नक्श इस पर हंसते हुए बोला, लगता है तुमने दूसरों की तारीफों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। वो तुम्हारी तारीफ करते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर मर्चेंट के लेवल की हो गई हो और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हो जिनके बारे में तुम जानती तक नहीं हो। मैंने उन्हें सॉल्व कर लिया है, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। उसने अब तक डॉक्टर मर्चेंट के तौर पर आयशा को कुछ नहीं भेजा था, अब मजाक उड़ाने की बारी इशिका की थी। उसने नक्श को घूरते हुए पूछा, मेरा काम तो हो गया, अब अपना बताओ, क्या डॉक्टर मर्चेंट ने तुम्हें उन सभी प्रॉब्लम का सलूशन भेजा? इशिका की बात सुनकर नक्श पूरी तरह चौंक गया। उसने फिर से पूछा, क्या तुमने सच में उसे कर लिया है? इशिका ने बिना कुछ बोले हां में सिर हिला दिया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इशिका सिर्फ अंडर ग्रेजुएट थी और उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ जब उसने डॉक्टर मर्चेंट को प्रोजेक्ट को भेजा था तब आयशा ने यही कहा था कि ये काफी मुश्किल है और डॉक्टर मर्चेंट को थोड़ा टाइम लगेगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि डॉक्टर मर्चेंट को जो काम मुश्किल लग रहा था वो इशिका ने कर दिखाया? नक्श अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी इशिका ने अपनी आंखें छोटी की और बोली, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट बाकी है, थोड़ी देर में मैं उसे तुम्हें भेज दूंगी। एक और बात, अपनी शर्ट मत भूलना और आगे से टीम वन के काम में टांग अड़ाने के बारे में सोचना भी मत। अपनी बात खत्म करके इशिका वापस अपने वर्क स्टेशन पर आ गई थी। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसे नक्श के साथ देख लिया था। लक्ष ने उसे आते ही पूछा, क्या उसने फिर से तुम्हें डॉक्टर मर्चेंट के साथ कंपेयर करने की कोशिश की? वो इंसान इतना घटिया है कि कुछ कह नहीं सकते, अफसोस है कि वो हमारा सीनियर है।
मिस सिंघानिया, तुम उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो, यहाँ सब जानते हैं कि नक्श का बिहेवियर कैसा है। वो एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे के अलावा और कुछ नहीं है, सानिया ने इसका कंधा सहलाकर कहा। पूरी टीम इशिका को काफी अच्छे से सपोर्ट कर रही थी, सब अपनी अपनी राय रख रहे थे। तभी रोहन अपने केबिन से निकलते हुए बोला, ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम इतनी कम उम्र में भी काफी अच्छा कर लेती हो, तो तुम्हें डॉक्टर मर्चेंट से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वो उम्र में बड़े हैं तो एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज भी आता है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी काफी कुछ आ जाएगा। सबने रोहन की तरफ देखा तो उसकी आंखें आज फिर से सूजी हुई थीं। इसका मतलब साफ था कि वो पूरी रात रुककर काम कर रहा था। रोहन ने महसूस किया कि सब उसकी तरफ परेशान चेहरे के साथ देख रहे थे। रोहन ने उन सबको तसल्ली देते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, हाँ मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया लेकिन छोटा मोटा सोल्यूशन निकाल लिया है, इससे हमें और टाइम मिल जाएगा और फिर हम इस पर आगे काम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। वहाँ आने से पहले रोहन ने अभिमन्यु को मैसेज भेजा था और उनके वर्क स्टेशन में चल रही टेंशन के बारे में उसे बताया था। जब भी मीटिंग होनी थी तब सबके सामने आ ही जाना था कि नक्श ने उन्हें किस तरह प्रेशराइज किया था और इस मामले में उसे अभिमन्यु की मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी। रोहन ने आगे कहा, तुम सब लोग चिंता मत करो, मैं टीम का हेड हूँ तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। रोहन की ये शब्द सुनकर इशिका काफी इम्प्रेस हुई। टीम लीडर होने के नाते वो असफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार था, जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं करते थे। इशिका उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। रोहन काफी हड़बड़ाहट में था इसलिए उसने इशिका की बात सुनी नहीं। वो बोला, अरे मैं संभाल लूंगा मैं। बोलते हुए अचानक रोहन रुक गया और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं जब उसे इशिका की बात समझ आई कि उसने प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। क्या तुमने उसे पूरा कर लिया है? रोहन ने आंखें बड़ी करके कहा। बाकी लोग भी इशिका की तरफ से हैरानी से देख रहे थे। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरे साथ मजाक मत करो तुम। लक्ष्य ने कहा, हाँ ऐसा मजाक झेलने की यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं है इशिका। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, रुकिए मैं आप सबको मेल कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इशिका ने जवाब दिया और फिर अपना लैपटॉप खोलकर इस वक्त उन सबको मेल की कॉपी को भेज दिया था। उन सबको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जब उन सबके मोबाइल पर नोटिफिकेशन साउंड मिला तो सब अपना अपना लैपटॉप चेक करने लगे। उन सब ने ईमेल खोला और इशिका के भेजे हुए मेल को चेक किया। वाकई इशिका ने उसे सॉल्व कर लिया था और वो उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और सब अपने काम में लगे हुए थे। लगता है इन्हें अब आधे घंटे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबको बिजी देखकर इशिका ने अपने मन में कहा और ऊपर जाने लगी। वो अभिमन्यु से मिलने के लिए जा रही थी। मुझे मिस्टर राजवंत से बात करके वो बुक लेनी होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लेकिन दादी के लिए दवाई बनाना अभी बाकी है, इशिका ने मन ही मन कहा और फिर ऊपर अभिमन्यु के फ्लोर पर पहुंच गई। वहीं ऊपर अभिमन्यु कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, तभी पृथ्वी उसके पास आकर बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पर वो मिस सिंघानिया आपसे मिलने के लिए ऊपर आई हैं, अगर आप ज्यादा बिजी हो तो मैं उन्हें वापस भेज दूं। अभिमन्यु इशिका के साथ अभी भी उस मोमेंट में उलझा हुआ था जहां गाड़ी में उसने अनजाने में उसके कंधे पर किस कर दिया था। उसके बाद से ही अभिमन्यु अलग ही फीलिंग से जूझ रहा था। उसने खुद को सख्त किया और बिना किसी भाव के कहा, नहीं ये बस हो गया है, उसे भेज दो अंदर। पृथ्वी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसने इशिका को अंदर भेज दिया था। उसके अंदर आते ही अभिमन्यु ने फिर से अपनी नजरें नीचे कर ली। वो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। अभिमन्यु ने डॉक्यूमेंट की तरफ देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे R&D डिपार्टमेंट में चल रही सारी टेंशन के बारे में पता है। अगर तुम लोगों से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो मैं बोर्ड मीटिंग में उसे देख लूंगा। कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से कोई भी सीनियर अपनी जूनियर को प्रेशराइज करके काम नहीं करवा सकता है। अभिमन्यु को लगा कि इशिका उसके पास इसलिए आई है ताकि वो उसकी मदद ले सके, रोहन ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया था। अभिमन्यु अपनी तरफ से तैयारी करके बैठा था। उसकी बातें सुनकर ईशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन मैं उस वजह से तुम्हारे पास नहीं आई थी। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बोलते हुए अचानक ईशिका रुक गई, तो वहीं ईशिका की बातें सुनकर अभिमन्यु का पेन भी रुक गया था। वो उसके बारे में सोच रही थी। ये जानकर अभिमन्यु ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और ईशिका की तरफ देखने लगा। ईशिका ने बेबी ब्लू कलर का लूज शर्ट और नीचे डार्क ब्लू डेनिम पैंट्स पहने हुए थे। हमेशा की तरह वो खूबसूरत लग रही थी। ईशिका की बातें सुनकर अभिमन्यु के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जल्दबाजी में उसने डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बजाय उसे खराब तक कर दिया था। दो डॉट। ईशिका अभिमन्यु को याद कर रही है। ये सुनकर ही अभिमन्यु के दिल के गिटार बजाने लगे। देखते हैं पूरी बात जानने के बाद क्या हाल होता है। अभिमन्यु तो पूरा पागल हो रहा है। अभी ईशिका की बारी है। चलिए पाठ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। आजकल आपकी समीक्षा काफी कम होने लगी है। प्लीज ऐसा मत कीजिए।